सरस्वती नमस्ते, वर गे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय। बोलिए हो आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय। बोलिए आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस। बोलिए हो शरद पूर्णिमा का रस। बोलिए 2400 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्पित रूप स्तोत्र पढ़ना। 2400 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्पित रूप स्तोत्र पढ़ना। एकाक्षरी से 36 अक्षरों तक, एकाक्षरी से 36 अक्षरों तक छंदों को पढ़ना न भूलिए हो। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय। बोलिए चलो देव शास्त्र गुरु की जय। कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की जय। अभ्यात्माओं अब अपनी क्लास प्रारंभ हो रही है। रत्नत्रय महोत्सव अपना चल रहा है। रत्नत्रय धारियों के प्रति विनय सुमन अर्पित करना, यही इस महोत्सव का प्रमुख लक्ष्य है। और इसमें हमने भगवान ऋषभ देव से भगवान महावीर तक 2400 तीर्थंकर भगवान का जीवन परिचय, आपने इस महोत्सव का प्रथम लक्ष्य बनाया है, और वह कल्याण कल्प तरु स्तोत्र के माध्यम से, जो कल्याणकारी है और कल्प तरु कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। ऐसे स्तोत्र का पठन करना और उसके माध्यम से छंदों का ज्ञान और भगवान का परिचय, ये दोनों ही कार्य सिद्ध हो रहे हैं। आप लोग उपयोग लगा करके पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्योंकि जितना पूजा पाठ स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं, सबके पीछे छंद छिपे हैं। छंद के बिना कोई स्तुति नहीं, छंद के बिना कोई संस्कृत का स्तोत्र नहीं। पहले देखती थी कि घर में सौभाग्यवती महिलाएं एक ज्वेलरी पहनती थी कलाई में, उनको क्या कहते थे सुभाष जी, छंदी कहते थे ना, छंद छंदी माने गोल गोल करके, और कलाई की हाथों की सुंदरता के लिए वो पहना जाता। ऐसे ही शब्दों के सौंदर्य को बिखेरने के लिए और शब्दों के सौंदर्य से भगवान के परिचय में अतिशय सौंदर्य दिलाने के लिए, दिखाने के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। खाली एक नग की अंगूठी बनती है और सुंदर सा हीरा पहन लेते हैं, लगता तो है कि एक नग है केवल, लेकिन वो कितना बहुमूल्य होता है मालूम है? एक हीरा और एक हीरे की अंगूठी, जितनी अनेक हीरे लगाकर छोटे छोटे उसकी अंगूठी जितनी मूल्यवान नहीं होती, उससे ज्यादा मूल्यवान, बहुत अधिक मूल्यवान एक नग का, एक हीरे की चाहे माणिक की चाहे पन्ने की बड़ी सी अंगूठी जो पहनी जाती है, उसका बहुत मूल्य होता है। इसी प्रकार से एकाक्षरी छंद बड़ा मूल्यवान रहा, जिसमें पांचों परमेष्ठी समाविष्ट हो गए और पंच परमेष्ठियों की अनंत शक्ति पूज्य ज्ञानवती माता इन्हें नमन करते हुए ये कहा कि वे पांचों परमेष्ठी मेरी रक्षा करें। यहां से शुरुआत की ऋषभ देव भगवान की स्तुति से, क्योंकि भगवान ऋषभ देव ने भी पहले परमेष्ठी में से साधु परमेष्ठी का पद प्राप्त किया। आचार्य उपाध्याय के गुण तो उनके अंदर स्वयमेव सब भरे हुए ही थे। कर्मों को नाश कर अरहंत परमेष्ठी बने और पुनः आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध परमेष्ठी बन गए। तो भगवान के अंदर पांचों परमेष्ठी के गुण समाविष्ट, ऐसा एकाक्षरी छंद इतना जो एक हीरे की अंगूठी के समान मूल्यवान रहा है। तो ऐसे करके आपको अनेक छंदों में हमने पांच पांच अक्षर के छंदों तक हम लाए और 12 श्लोक तक आपने पढ़ा कि 12 श्लोकों में पांच अक्षर के छंदों का प्रयोग किया गया। आप देखो कल कुछ एक दो प्रश्न किए थे लोगों ने कि जैसे मकार है यानी पातु मम है, तो मम में माँ लघु है लेकिन उसको दीर्घ माना गया। ये नियम है छंद का कि पाद के चरण के अंत का जो अक्षर लघु भी है वह दीर्घ ही माना जाता है, लघु को भी दीर्घ माना जाता है। इसलिए आपको सब जगह ये बात ध्यान रखना है। तो जो नियम व्याकरण में या छंद में बताए जाते हैं उन नियमों का प्रयोग पूज्य ज्ञानमती माते अवश्य में करती हैं कि उस नियम को साकार दिखाया जाए। एक तो बात ये हुई और दूसरी बात आपको जो यगण मगण तगण हमने बताया है, यानी छंद में 8 गण होते हैं और उसका पेज भी कल हमने आपके पास भिजवाया था कि किस प्रकार से वर्ण छंद में 8 गण होते हैं और उन गणों के अनुसार ही अक्षरों को गिन करके, ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी अक्षर रख दिया छोटा बड़ा कुछ भी, वर्णों को गिनते हैं, उनकी मात्राओं को गिनते हैं, उनको लघु और गुरु जहाँ जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही प्रयोग करते हैं, तब जाकर के छंद परिपूर्ण होते हैं। और हिंदी के अंदर तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है लेकिन संस्कृत के अंदर एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक मात्रा या एक लघु और दीर्घ का अंतर छंद को भंग कर देता है। इसलिए छंद बनाने में इन चीजों को व्याकरण के साथ में एक एक अक्षर और एक एक मात्रा की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब 8 गणों को आप देखिएगा कि आपके सामने ये है यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण रगण और सगण और ल माने लघु और ग माने गुरु। तो एक गण में पहली बात 3 अक्षर ही होते हैं, एक गण में 3 अक्षर। अब यगण में देखिए इसको आप नोट कर लीजिए कि यगण में एक लघु और 2 गुरु 3 अक्षर रहे, मगण में 3ों गुरु या माता राज भान से लगा वो हमने एक पंक्ति दी थी उसी के अंदर सब लागू हो जाते हैं। तो इसमें एक लघु 2 गुरु, मगण में 3ों गुरु और तगड़ में ता राज 2 गुरु और एक लघु होते हैं। ये प्रारंभ में आपको अगर छंद सीखना है तो आपको इतना तो ध्यान में जरूर जरूर रखना पड़ेगा। रोज रोज इसको पढ़िए और सुनिए और जब पूरी पुस्तक आपको मिल जाएगी बस 2-3-4 दिन में छप के आने वाली है, आपके पास पहुंचने वाली है। तगण और उसके बाद रगण, तो राजभा माने एक गुरु एक लघु एक गुरु, अक्षर 3 होती हैं एक गण में। और फिर आया जगण, जगण में एक लघु फिर गुरु फिर लघु। तो लघु और गुरु की पहचान भी आपको बताई गई है कि एक डंडा जो है सीधा सीधा ये लघु कहलाता है और जो वक्र यानी इसके आकार का दिया गया है ये गुरु का चिन्ह है। और उसके बाद भगण में एक गुरु और 2 लघु भानस ऐसे उसका उदाहरण दिखाया गया। नगण में नसल यानी 3ों ही लघु होते हैं, 3 डंडे हैं इसमें। और सगण में देखो सलगा माने 2 लघु और 1 गुरु, ये सगण हो गया। तो ये आठ तो हो गए गण, और उसके बाद में लघु और गुरु, यमाता राजभान सलगा, ये हुआ। और इसके साथ में एक श्लोक आया था, आठों गणों के लक्षण को बताने वाला, मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्चनकारो भादि गुरुर पुनरादि लघुर यहाँ जो गुरु मध्य गतो प्रलमध्या सोंत गुरु कथितों ते लघुस्तहा। यद्यपि आपको इसको पढ़ाने की आवश्यकता कोई नहीं थी, आपको मैंने लक्ष्य बनाया था कि केवल स्तुतियां हम पढ़ाएंगे और कल्याण कल्चर स्तोत्र आपके कल्याण करने में कल्प वृक्ष के समान फल दो। लेकिन जब छंद आए और एक एक छंद के अंदर इतना अर्थ छिपा था तो मेरा मन नहीं माना, और हमने सोचा कि इन छंदों को भी आपको पढ़ाते चलें, चाहे दिन भले ही निकल जाए। तो अब आपने इतने की बात में मैं समझती हूँ कि जरूर जरूर गणों की बात समझनी होगी, वरना आप कहेंगे पता नहीं माता जी यगण मगण तगण क्या बता रही हैं। तो इन गणों के अनुसार अक्षरों का चयन होता है, और अक्षरों के चयन के साथ व्याकरण के नियम लागू होते हैं कि द्वितीया विभक्ति की प्रथमा विभक्ति। आप चाहें तो केवल इन स्तुतियों के माध्यम से पूरा व्याकरण छंद और अलंकार पढ़ सकते हैं। आपको अलग अलग से भी उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको पंक्ति छंद, जो पांच अक्षरी छंद है, उसको 12वें नंबर के श्लोक में पढ़ाया। और अभी स्तुति चल रही है भगवान विश्वदेव की, केवल एक बार यहाँ तक हम केवल पढ़ लेते हैं। ओम मां सोव्यात् जयनी वाणी सिद्धिम दद्यात् गणेन्द्र तदंग्रिम नमामि त्रिकालम त्रिजनैः सन्ततम् मन्मनः पूयताम् श्रीदेवो नाभिः वन्देऽहं तं मूर्ध्ना पूषा केता पूता जाता तत्सूते सा सेन्द्रैर्मान्या महासत्यां मरुदेव्या सुतो भूस्त्वं जगत्पूज्यः युगादिजोजिनेश्वरः ददातु मे शिवश्रियं ना विनृपाते स्तिपिता आदिजिनः पातु मम सुखकारी भवहारी पुरुदेवो वसुमेन्ताः ज्ञान सिन्धुं सर्वबन्धुं सर्वसिद्ध्यै नौमि नित्यम् पाठकवर्णं सद्गुणपूर्णं सिद्धिवधूस्त्वां सास्मृणीते। यानी अधिकतर श्लोक में नमस्कार वंदना की क्रिया को लिया है, तो अधिकतर हर शब्द को द्वितीया विभक्ति में लिया है। पाठक वर्णम स्वर्ण वर्ण वाले भगवान हैं उनको, सद्गुण पूर्णम जिनके अंदर गुणों का भंडार भरा हुआ है, ऐसे भगवान को, सिद्धि वधूस्त्वाम सिद्धि क्रिया के जो सिद्धि वधु के जो पति बन गए, तो सा स्म व्रणीते, ऐसे आपको सिद्धि व्रणीते स्म सिद्धि कन्या ने वरण किया है। तो व्रणीते स्म ये जो क्रिया है, और बाकी सब में द्वितीया विभक्ति है। ऐसे भगवान को एडजेक्टिव लगाया भगवान के साथ में, उसके बाद में कहा ऐसे गुणों से परिपूर्ण भगवान को सिद्धि वधु, हे भगवान आपको सिद्धि वधु ने प्रणीते स्म माने वर्ण किया है। तो क्रियाओं के भी सिनोनिम होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, और कर्ता में भी कर्म में भी इन सब में पर्यायवाची शब्दों का यानी कोश का प्रयोग करके और सारा व्याकरण छंद अलंकार और कोश चारों चीजें पूज्य माता जी ने इसमें भर दी है। अब हम आगे चलते हैं 13वें नंबर के श्लोक में, छह अक्षर का छंद है, शशि वदना छंद। शशि वदना छंद का लक्षण देखो नीचे है, या पीडीएफ इसका भेज दिया गया। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण और एक यगण हो, उसे ससीवदना छंद कहते हैं। तो क्योंकि 6 अक्षर का है तो इसमें 2 गण आ गए, और ससीवदना न्यू, न्यू माने एक नगण और एक यगण। तो नगण में 3 लघु और यगण में 1 लघु 2 गुरु, यानी कि इस छंद के अंदर 4 लघु और 2 गुरु चारों चरणों में दिया है। अब इसका अर्थ जानिएगा। मुनि नुत पादा, मुनि नुत पादा माने मुनियों ने भी, नुत माने नमस्कार किया है, पादा माने जिनके चरणों में। ऐसे भगवान त्रिभुवन नाथा, तीनों लोकों के जो नाथ हैं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है समय, पादा नाथा, ये सब प्रथमा विभक्ति है, भगवान के विशेषण है। विगलित मोहा, और जिनके अंदर से मोह बिल्कुल गल गया माने नष्ट हो गया, ऐसे भगवान निज सुखम अवापनोत, ऐसे प्रभु ने अपने सुख को, अपना सुख कैसा, आत्म सुख को मापनोत, सुखम आपनोत ऐसा निकलेगा। तो आत्म सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, तो पहले भगवान के विशेषण बताए कि मुनियों ने जिनके चरण कमल पूजे हैं, स्तुति की है, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, जिनका मोह एकदम नष्ट हो गया है, गल गया है, ऐसे भगवान ने आत्म सुख को प्राप्त कर लिया भगवान ऋषभदेव ने। आगे चलते हैं, 7 अक्षरी छंद में मधुलेखा छंद के अंदर स्तुति की गई है। मसौ गा श्यान मधुलेखा, आ 7 अक्षरी छंद में 2 तो गण आ जाएंगे और 1 अक्षर गुरु। तो मसौ गा यानी एक मगण प्रत्येक चरण में, एक सगण और एक गुरु हो, उसे कहते हैं मधुलेखा छंद। आप देखो इसके छंद के लक्षण को तो पढ़ लिया, एक एक अक्षर को मिलाना, कई बार जब छंद लिखना होता है ना तो इन लक्षणों को पहले ऊपर लिख लेते हैं और उसके बाद व्याकरण के अनुसार एक एक अक्षर वहां पर रखते हैं, जोड़ते हैं, तब जाकर के छंद बनता है। बहुत ही उपयोग की स्थिरता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये मत सोचने लगना कि बस हमने पढ़ लिया और हम भी बनाने के अधिकारी बन जाएंगे, नहीं, पहले व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, कि छंद अलंकार कोश, ये तो मैं आपको केवल बता रही हूँ कि आपके सामने बिल्कुल आईना है, इसलिए बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मधुलेखा छंद के अंदर कहा, देवेंद्र ही परिपूज्यो योगिंद्र ही रनुचिंता, चक्रेश ही रविवंद्यो वंदे तम वृषभेशम। खाली स्तुति नहीं है, 3 इंद्र को इकट्ठा कर दिया, यह अनुप्रास है। और बहुत बढ़िया कि देवेंद्र ही परिपूज्यो, इंद्रों के द्वारा, जो सौधर्म आदि इंद्रों के द्वारा परिपूज्य माने अच्छी तरह से पूज्य हैं, माने इंद्र भी जिनके चरणों में किंकर बन करके खड़ा रहता था, हमेशा भगवान को पूज्य मानकर पूजा करता था। और योगिंद्र ही रनुचंत्या, एक तो स्वर्गों के इंद्र से लिया इंद्रों ने जिनकी पूजा की, और योगिंद्र ही रनुचिंत्या, योगिंद्र ही माने योगियों के इंद्र अर्थात गणधर देव ने भी जिनका चिंतन किया, अर्थात उन्हें मन में बिठा करके उनका चिंतन करके अपनी आत्मा को पवित्र किया। या मुनियों के इंद्र योगियों के इंद्र आ गए, और तीसरा चक्रेश ही रविवंद्यो, मनुष्यों का इंद्र कौन होता है, चक्रवर्ती। 6 खंड के वैभव को प्राप्त करने वाले भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रीश माने चक्र के ईश, तो तीसरे इंद्र भी जिनके द्वारा अभिवंद्य माने चक्रवर्ती के भी द्वारा जो सर्वदा वंदित हुए, वंदना जिनकी की गई, ऐसे तम ऋषभेशम वंदे, इसमें कर्ता क्या छिपा हुआ है, तम ऋषभेशम अहम वंदे, उन ऋषभेश भगवान ऋषभदेव भगवान, इनके कई नाम हुए, 1008 नाम भी हुए हैं, तो ऐसे वृषभेश भगवान को मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो पहले तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, देवेंद्र ही परिपूज्य, देवेंद्रों के द्वारा परिपूज्य, योगिंद्र ही रनुचिंता, योगिंद्रों के द्वारा चिंतन करने योग्य, और चक्रेश ही रविवंद्यो, चक्रीश के द्वारा अभिवंद जो हुए, फिर लिया ऐसे तम वृषभेशम अहम वंदे, वंदे का मतलब यह किसमें वंदे के साथ वाला कर्ता छिपा हुआ है। अगर वंदते होता तो सा होता, वंदे है इसके साथ में अहम वंदे ये लग जाएगा। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उन ऋषभ देव भगवान को मेरा नमस्कार, उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब आगे चलते हैं हम अनुष्टुप छंद, ये सबसे ज्यादा प्रचलित छंद है और आठ अक्षरी छंद हो। आठ अक्षर जिसमें हो तो आठ अक्षर में भी बड़ी नियम है। इसमें बताया गया कि जिसके चारों चरण में पांचवा अक्षर तो लघु हो तथा छठा और आठवां अक्षर दीर्घ हो एवं प्रथम और तीसरे चरण का सातवां अक्षर दीर्घ हो, दूसरे और चौथे चरण का दूसरा वर्ण लघु हो उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। इसका दूसरा नाम है श्लोक, श्लोक भी कहते। तो चौथे चरण का सातवां अक्षर लघु हो उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। ये थोड़ा करेक्शन लगा दें है ना। आप देखिएगा ये सारा लक्षण इसमें लागू होता है। इषमें भगवान की स्तुति की है, आषाढ़े सिद्ध पक्षे सा द्वितीया तिथिरुत्तमा सर्वार्थ सिद्धि तस्तुत्वा मातुर्गर्भे समागता। अब देखो चौथे चरण का सातवां अक्षर लघु हो तो चौथा चरण कौन सा है, मातुर गर्भे समागता, तो सातवां अक्षर इसका हुआ गता का ग लघु है, तो पूरा लक्षण उसके अंदर लागू हो जाता है। तो आषाढ़े सिद्ध पक्षे से आषाढ़ असित इसमें निकलेगा, आषाढ़े असित पक्षे आषाढ़ वदी के पक्ष में द्वितीया उत्तमा तिथि ही, द्वितीया जो उत्तम तिथि रही यानी आषाढ़ वदी द्वितीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि तश्चित्वा सर्वार्थ सिद्धि नाम के विमान से च्युत होकर माँ की आयु को पूर्ण करके च्युत होकर मातु गर्भे समागता अपनी माता के गर्भ में आ गए भगवान। यानी अब इसमें गर्भ कल्याण की स्तुति कर ली कि भगवान ने आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर माता के गर्भ में अवतार ले लिया। तब उस समय माता ने 16 सपने देखे थे और उन सपनों का जब फल पूछा था तो महाराजा नाभिराय ने उन 16 सपने के फल में बताया था कि ऐसे ऐसे विशेषणों से सहित है आपका पुत्र और वह तीर्थंकर पुत्र आपके गर्भ में अवतीर्ण हो चुका है। तो आषाढ़ कृष्णा द्वितीया गर्भ कल्याण की तिथि है। आगे भी अनुष्टुप छंद में ही और भी श्लोक हैं। नवम्याम चैत्र कृष्णे त्वं जन्म प्राप्य प्रजापति ब्रह्मा स्रष्टा विधाता भू युगादौ तीर्थ नायिका। विधाता भूत है ना, विधाता भू वहां पर विसर्ग रख लेना, दा को दा की मिस्टेक है इसलिए उसको डिलीट कर देना। तो नवम्याम चैत्र कृष्णे त्वं, हे भगवान त्वं चैत्र कृष्णे नवम्याम चैत्र की कृष्ण पक्ष में नवमी तिथि के दिन जन्म प्राप्य जन्म प्राप्त करके हे प्रजापति प्रजापति भगवान प्रजा नाम पति रक्षका प्रजापति ही। आज प्रजापति किसको कहते हैं, आज प्रजापति एक जाति वाचक हो गया लेकिन यहाँ विशेषण वाचक है भगवान का कि जो प्रजा का पालन करने वाले हैं ऐसे प्रजापति भगवान ने चैत कृष्णा नवमी की तिथि में जन्म प्राप्त करके प्राप्य प्राप्त करके फिर ब्रह्मा स्रष्टा विधाता भू माने हे भगवान आप जो है ब्रह्मा के रूप में हुए और स्रष्टा के रूप में हुए क्योंकि आपने इस सृष्टि के क्रम को बताया और जीवन जीने की कला सिखाई विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को देख करके बनाई नहीं बताई क्योंकि सृष्टि अनादिकालीन है, सृष्टि की रचना कोई नहीं करता। यहाँ पर इस धरती पर भोग भूमि का काल चल रहा था, षटकाल परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन हो रहा था तो चतुर्थ काल का प्रवेश होने वाला था लेकिन इस बार हंडाव सर्पणी काल के निमित्त से तृतीय काल के अंत में ही भोग भूमि का अंत होने लगा। फल वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया। तब भगवान ने ब्रह्मा के रूप में विधाता के रूप में सृष्टि को का क्रम बताया। इसलिए युगांधर तीर्थ नायक का इस युग की आदि में तीर्थ नायक के रूप में आ रहे हैं। क्या तुम कर्ता हो गया? तो आपने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन जन्म लेकर ब्रह्मा सृष्टा विधाता बनकर युग की आदि में तीर्थ नायक के रूप में आप प्रसिद्ध हो गए, यानी तीर्थ के प्रवर्तक बन गए। तो ये आप समझ लेना कि भगवान ने सृष्टि बनाई नहीं थी। भगवान के सामने जब प्रजा ने आकर हाहाकार किया कि भगवान हम कैसे जिए, सूर्य चंद्रमा भी अवलुप्त होने लग गए और कल वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तो हम करें क्या? तब भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से विधि क्षेत्र की सृष्टि का स्मरण किया और तुरंत उन्होंने बताया कि अब भोग भूमि से हम कर्म भूमि में आ गए हैं, इसलिए हे प्रजाजनों आपको कर्म करना पड़ेगा। तब उन्होंने हसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन सब क्रियाओं के छह कलाओं के माध्यम से प्रजा को जीवन जीने की कला बताई थी। इस प्रकार से भगवान के जन्म को हमने 16 श्लोक तक लिया है। पांचों कल्याण की तिथियां और भगवान के शरीर की ऊंचाई वर्ण वगैरह सब कुछ इस स्तोत्र के अंदर समाविष्ट है। इसलिए आपको जानना है कि इस अनुष्टुप नाम के 8 छंद के बाद में इसमें अंत में आएगा 19 अक्षरी छंद भी शार्दूल विक्रीडित। तो आप इस इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ऋषभ देव का चरित्र पढ़ना है, जिन्होंने अयोध्या के अंदर जन्म लिया था, जिनके पिता महाराजा नाभि राय महारानी मरु देवी हुई। तो इनके चरित्र को पढ़ने के लिए आपको हमने 24 तीर्थंकर नाम की पुस्तक का भी पीडीएफ भेजा है। इसमें उत्तर पुराण के आधार से 2400 भगवान के परिचय हैं और इस स्तुति के माध्यम से आप छंदों के माध्यम से बड़ा कल्याणकारी और चमत्कारी स्तोत्र पढ़ रहे हैं। अब हमने इसीलिए आपके लिए ज्ञान पहेली रखी, कल्याण कल्प तरु ज्ञान पहेली। परसों से ही पहेली चल रही है, आज 13 तारीख है, परसों 15 तारीख तक पहेली का आपको उत्तर सबको दे देना है। और ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप पर कोई पहेली का उत्तर ना भेजे, ये पहेली है आज पुनः डिस्प्ले इसको कर दें। और जो लोग चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप नए वाले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मंगवा लें। 15 तारीख की सायंकाल तक आप लोग ज्ञानांजलि ऐप में इसको फिलअप करके सबमिट कर दें और आ जाएगा। फिर 16 तारीख को इसका रिजल्ट बताया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक पहेली को ना भरा हो तो ले लें पहेली और आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके, और ज्ञानांजलि ऐप को आप गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर से अपने अपने फोन में डाउनलोड करके और ज्ञानांजलि ऐप पर ही इसको भरना है, उसी पर आपको इनाम दिए जाएंगे, यानी उसी से दे करके। और जो कोई व्हाट्सएप में भेजेंगे उनके उत्तर मान्य नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी प्रक्रिया में आप लोगों को फिट रहना है। नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोगों को अभी पहेली ना मिली हो और नए जुड़े हो चाहते हैं तो उनको पहेली मिलेगी। नंबर नोट करें, 7310823701, चैट बॉक्स में भी डाला तो होगा। इसी नंबर से संपर्क करके और कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली मंगा लें। इसके अंदर 10 प्रश्न है और इस स्कूल के अंदर आपको आ आ दो ही अक्षर के उत्तर रहेंगे और इनके अंदर आपको लिखना और उसके अंदर भेजना है। चलिए इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। कल हम कोशिश करेंगे कि भगवान ऋषभ देव की स्तुति पूर्ण हो, और सभी स्तुतियां इतनी बड़ी नहीं है, कोई छोटी छोटी भी अजितनाथ भगवान की केवल 9 श्लोक की भी है। तो आगे हम इसी तरह से विषय को चलाते रहेंगे। आपकी कोई भी शंका हो, हम चाहते हैं ये स्तुति और छंद आपकी पूरी तरह से हृदयंगम हो जाए, और जो भी आपको उसके विषय में क्वेरी हो तो जरूर जरूर पूछें। चरण के अंत में श्लोक के अंत में लघु अक्षर भी गुरु माना जाता है, ये श्लोक का नियम छंदों का ये नियम है, इतना ध्यान रखना। और हमने आठों गणों के आपको लक्षण बताए हैं।